भारत में अर्बन पावर्टी कितना बड़ा मुद्दा है, खासतौर से जो SDGs हैं उन्हें हासिल करने के लिए इस मुद्दे को हल करना कितना अहम है?
2011 की जनसंख्या के गणना के हिसाब से भारत में 31% लोग जो है शहरों में रहते थे। ये एक छोटा जो आंकड़ा लगता है कि सिर्फ 31%, लेकिन जब हम इसको वास्तविक नंबर्स में देखें तो ये आता है लगभग 40 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है, लगभग यूनाइटेड स्टेट की जनसंख्या, पूरी जनसंख्या के या उससे भी ज़्यादा। जो प्रोजेक्शंस जो दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि 2030 तक ये बढ़कर 41% हो जाएगी, और नंबर के हिसाब से अगर देखे जाए कुल जनसंख्या का तो 60 करोड़ लोग, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक जनसंख्या है। तो ये है कि अभी GDP का 60%, 60% भारतीय GDP का कंट्रीब्यूशन आता है शहरों से, और 2030 में जब हम कह रहे हैं कि 60 करोड़ के लगभग जनसंख्या होगी शहरों की, तो ये बढ़कर लगभग 75% हो जाएगा। तो अपने आप में देश की प्रगति के लिए और उन्नति के लिए और लोगों के खुशहाली के लिए शहरों का बहुत ज़्यादा एक महत्व है। उसी में अगर हम देखें कि दूसरा एक पहलू भी है, शहरों को इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, बाकी सहूलियतें भी ज़्यादा हैं, इसीलिए लोग जो है गांव से शहरों की तरफ आते हैं। 2001 से 2011 के बीच में पहली बार ये हुआ भारतीय जनसंख्या जनगणना के दौरान कि शहरों में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है जनसंख्या की गाँव के कंपेरिजन। इससे हम कह सकते हैं कि जो शहरीकरण है उसकी गति जो है बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में और बढ़ेगी। ये लगभग 50% ऐसे थे जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी जो कि माइग्रेशन की वजह से हुई थी, और 50% जो कि नेचुरल इंक्रीज, जिसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे थे उसकी वजह से। ये भी एक मेजर ट्रेंड दिखाता है, क्योंकि पहले जो है माइग्रेशन का कंट्रीब्यूशन या उसका शेयर जो है उसमें कम होता था, इसका मतलब माइग्रेशन बढ़ रहा है, गांव से शहरों की तरफ जो है ज़्यादा लोग आ रहे हैं। देखने की बात यह है कि जब वो आ रहे हैं और जिस उम्मीद से वो लोग आ रहे हैं वही हो रहा है कि नहीं। देखने में ये आया है कि बहुत से माइग्रेंट जो आ रहे हैं गांव से उठ के वो सीधे शहरों में आ रहे हैं, और ज़्यादातर जो है शहरों के जो बाहरी इलाके हैं या फिर स्लम जिनको हम बोलते हैं, उनमें वो उन लोगों को रहने की जगह और वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। वो गरीबी दूर करने के लिए रोज़गार की तलाश में शहरों में आ रहे हैं, उनका वो सपना पूरा हो रहा है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना चाहते हैं तो इस पे ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
तो आपने कहा अर्बन माइग्रेंट्स आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या शहरों में बढ़ रही है, तो क्या जलवायु परिवर्तन भी उसका भी एक बड़ा हाथ है लोगों के शहरों की तरफ बढ़ने की तरफ?
एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ये भी है, अभी फिलहाल के सालों में ये जो है देखने में आ रहा है कि कई स्थानों पर सूखा पड़ा, ठीक ढंग से बारिश नहीं हुई, तो वहाँ से लोगों का पलायन शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा हुआ। 3-4 साल पहले बुंदेलखंड के रीजन से बहुत लोग जो है दिल्ली में माइग्रेट किए, इसी तरह से अपने भारत के दूसरे हिस्सों से भी लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। इसका एक दूसरा पहलू और भी है कि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे बचने के लिए, वहाँ पर रोज़गार नहीं होने के लिए शहरों में आ रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि शहरों में भी जब वो आ रहे हैं तो ऐसे वल्नरेबल और हैजार्डस जगहों पे रह रहे हैं कि जिसे क्लाइमेट चेंज ज़्यादा अफेक्ट करता है। वो निचली स्तर वाले इलाकों में रह रहे हैं या फिर नदी के किनारे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जलाशयों के किनारे जो रह रहे हैं, अगर कभी भी बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ ज़्यादा आती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले भी वही लोग हैं। दोनों तरह से कि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेट भी कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज से वो बच भी नहीं पा रहे हैं, शहरों में आके वो और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जा रहे हैं।
तो ये जो VNR कंसल्टेशन चल रहे हैं, तो अर्बन माइग्रेंट्स पुअर पे जो कंसल्टेशन हुई, उसमें इस चर्चा में क्या निकल कर सामने आया और क्या कुछ चौंकाने वाली बात भी सामने आई है?
पहली बात तो ये कि बहुत ही अच्छा संवाद हुआ वहाँ पर, और जो सामाजिक संस्थाएँ हैं वो आई हुई थी, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं उनको बुलाया हुआ था। खास बातें जो उभर के आई, जिनको अगर 3 भागों में विभाजित करूं, तो एक तो ये था कि बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो लोगों की पूरी नहीं हो रही हैं, उनको जो सुविधाएं सहूलियतें जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। दूसरा जो ये था कि कुछ खास तबके हैं जो कि ज़्यादा वल्नरेबल हैं, चाहे आप उनको जो रेहड़ी लगाते हैं पटड़ियों पे उनका बात कर लो, या फिर जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके भी मुद्दे वहाँ पे उठे, और जो स्लम में रहते हैं उनके उनके भी मुद्दे उठे। तो एक पॉपुलेशन के हिसाब से कि कौन कौन से जो जनसंख्या के जो तबके हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल है उन पे बात उठी। तीसरा एक और देखने में आया, कई प्रेजेंटेशन वहाँ पे उसमें ये भी था कि कानून बन जाते हैं, स्कीम्स बन जाती हैं, लेकिन आखिरी व्यक्ति तक जो सबसे गरीब है, स्लम्स में रह रहा है या फिर जो दिहाड़ी मजदूर है, उनके लिए जो स्कीम्स और वो बनी हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। फिर काफ़ी जो है संस्थाओं ने ये भी बताया कि कैसे सरकार के जो विभाग हैं उनके साथ मिलके दूसरे लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं, और जो अच्छे पायलट मॉडल्स हैं उनके भी बारे में जिक्र किया गया। सुझाव इस तरह के भी आए कि कैसे जो है लोगों का भागीदारी ज़्यादा हो उन स्कीम्स में, या फिर जो कमिटीज़ बनी है, जो जैसे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर सेस है, तो वो है तो ट्राइपार्टाइट के, उसमें एम्प्लॉयर भी है जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, सरकार भी है, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के हैं उनके नुमाइंदे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर के जो है उनकी बातें नहीं सुन के फैसले होते हैं। तो उनका ये भी था कि अगर हमारा जो हमारी ज़रूरतें हैं कैसे वो पैसा खर्च हो ये बात वहाँ पे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्या लग रहा है आपको इस तरह की कंसल्टेशन से, खासतौर से उस दिन की कंसल्टेशन से?
भारत अपनी रिपोर्ट देगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, जो जिसको हम वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट कहते हैं, और सारा ये प्रयास इस तरह का है कि लोगों की भागीदारी हो उस रिपोर्ट को बनाने में। तो उम्मीद यही है कि जो डिफरेंट जो कंसल्टेशन हो रहे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं उन पे हो रहे हैं, अलग अलग जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं उनको लेके हो रहे हैं, तो इनसे जो निचोड़ निकलेगा, वीएनआर की रिपोर्ट होगी उसमें उनको हिस्सा मिलेगा, सरकार की नज़र में भी आएगा, जो अच्छी चीज़ें होंगी वो हाईलाइट होंगी, जो दूसरी जगह उनको फिर लागू किया जा सकता है, और जो समस्याएं हैं वो भी और चैलेंजेस जो हैं लोग फेस कर रहे हैं वो भी आएंगे।
सिविल सोसाइटी के अलावा इसमें क्या कुछ केस स्टडीज भी थे? लोग खुद आए थे, उन्होंने अपनी कहानी बताई?
जो अलग अलग मुद्दों पे जो काम कर रहे हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई थी, और उसमें एक खास मुद्दा ये उभर के आया, दिल्ली का जो है केस स्टडी भी आया कि बसों में जो है फ्री अगर कर दिया गया है महिलाओं के लिए तो कितनी सुविधा हुई है महिलाओं को भी, जिससे क्योंकि एक बात जो उभर के आई थी वहाँ पे कि महिलाओं को काम करने के लिए और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको जो है इस तरह से सुविधा मिल रही है तो उनका भागीदारी बढ़ती है, उनको वो बाहर निकल सकती है, काम करने जा सकती है। दूसरा जैसे अमरावती, तेलंगाना वगैरह, हैदराबाद में भी कैसे जो है संस्थाएं काम कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के में लोगों को घर दिलाने के लिए, लेकिन उसमें ये भी था कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और उनका निदान कैसे हो। ज़्यादातर जो है संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनके क्या अनुभव रहे हैं वो उसमें बांटे गए।
तो इन सब में यूएन का और यूएनएफपीए का क्या रोल?
यूएन का एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, वो करवा रही है और ये भागीदारी बढ़ा रही है, तो एक जगह रिपोर्ट बनने की बजाय जो है उसमें ज़्यादा वॉइसेस, ज़्यादा आवाज़ उसमें सम्मिलित होंगी और उन लोगों की सम्मिलित होंगी जो कि एसडीजी एक जो उसका टैग लाइन है, लीविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी जो है पीछे नहीं रहना है, पीछे नहीं छूटना है। तो ये सारे जो संवाद हो रहे हैं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, ये ऐसी ही जनसंख्या या पॉपुलेशन के लिए हो रहे हैं। मैं कहूँगा कि दो लेवल पे यूएनएफपीए का मेन काम है, एक तो है आंकड़ों के लेवल पे बढ़िया आंकड़ा होना, वो आंकड़ा जो है डिसएग्रीगेटेड हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जेंडर के लेवल पे, जिससे कि उसके हिसाब से आप जो है प्लानिंग कर सकें, पॉलिसीज बना सकें। हम लोग कुछ पायलट प्रोग्राम चला रहे हैं, एक भुवनेश्वर में पायलट प्रोग्राम चला रहे हैं और एक पटना में, दोनों का बेसिक मूल एक ही है कि वहाँ पे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, खासकर जो स्लम में रह रहा है, लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको आप जो है कैसे सशक्तिकरण उनका कर सकती हैं, स्किल डेवलपमेंट के तौर पे, चाहे उनके एजुकेशन के लेवल पे, या उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या मेजरमेंट वो अपना सकते हैं। और यूएन का हमेशा से है कि लोगों के साथ जुड़ना है, साथ काम करना है। हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका भी ये कहा है कि लोगों के पास जाइए, लोगों के साथ जुड़िए, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या परेशानियाँ हैं और उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनको सुनिए, उन समाहित करना, उनको पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जैसे कि मैंने कहा कि लीविंग नो वन बिहाइंड, वही इन जो संवाद हैं उनके पीछे वही एक अवधारणा है, उसी को लेकर चला जा रहा है।